બે જનવરી બેસાડો
રાધા માધવ કુંજ બિહારી ગોપી જન વલ્લભ ગિરિવર ધારી જય રાધા માધવ કુંજ બિહારી ગોપી જન વલ્લભ ગિરિવર ધારી યશોદા નંદન વ્રજ જનરંજન યમુના તીર વનચારી રાધા માધવ કુંજ બિહારી ગોપી જન વલ્લભ ગિરિવર ધારી યશોદા નંદન વ્રજ જનરંજન યમુના જય રાધા માધવ કુંજ બિહારી ગોપી જન વલ્લભ ગિરિવર ધારી યશોદા નંદન વ્રજ જનરંજન યશોદા નંદન વ્રજ જનરંજન યમુના તીર વનચારી યમુના તીર વનચારી જય રાધા માધવ કુંજ બિહારી ગોપી જન વલ્લભ ગિરિવર ધારી યશોદાનંદન વ્રજ જનરંજન યમુના તીર વનચારી जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदा नंदन व्रज जन रंजन मुना तिरवन चारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। राधा गिरिधारी राधा गिरिधारी राधे, जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा। गुरनिताय जय गौरनिताय गुरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। Oh, बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल मानदे जय ओम नित्य लीला प्रवेश विष्णुपाद परिवार सुखाचार्य अष्टोत्तर सत भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की जय ओम नित्य लीला प्रवेश विष्णुपाद परिवार सुखाचार्य अष्टोत्तर सत भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय जय श्रील नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय जय श्री श्री राधा गिरधारी जी की जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा देवी की जय श्री श्री गौर निताय की जय युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय विश्व मंगल पतित पावन हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की जय हरे कृष्ण महामंत्र की जय ग्रंथराज श्रीमद भागवतम की जय सबेद भक्त वृंद की जय निताय गौर हरि प्रेमानंदे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयामुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी हरे कृष्ण। तो रविवार के सातकालीन भागवत सत्र में आए हुए सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। बड़े सौभाग्य की बात है कि इस शताब्दी के महान संत महान वैष्णव महाभागवत श्रील प्रभुपाद महाराज के अनुगत्य में एवं श्री श्री राधा गिरधारी जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी और सर्व अवतार शिरोमणि श्री श्री गौर निताई के चरण कमलों का आश्रय लेकर इतने महान वैष्णव भक्त समुदाय के मध्य में कृष्ण प्रेम प्रदान करने वाले श्रीमद् भागवत सत्र का हम पठन पाठन श्रवण करने के लिए एकत्रित हुए हैं। ये सबसे बड़ी सौभाग्य की बात है और श्रीमद् भागवतम में भी जैसा राधा गिरधारी मंदिर में श्रवण करते करते दशम अंक में हम प्रवेश किए। दशम स्कंद को भगवान का मुख कमल कहा जाता है। जैसे भगवान का दर्शन जब हम लेते हैं तो भगवान के चरण कमल से उनका दर्शन प्रारंभ करते हुए उनकी जांघा, उनका कटी प्रदेश, उनका नाभि कमल, उनका वक्ष स्थल से होते हुए हम धीरे धीरे मुख कमल तक पहुंचते हैं। तो इस प्रकार प्रभुपाद जी विशेष आदेश देते हैं, सूचना देते हैं कि व्यक्ति को भागवतम के 9 स्कंद तक श्रवण करके, पठन करके बाद में 10वें स्कंद में जाना है। कुछ लोग होते हैं जो सीधे डायरेक्ट 10वें स्कंद में रुचि रखते हैं, लेकिन आचार्यों के मत अनुसार जब तक हमको 9 स्कंद का ज्ञान नहीं है तो 10वें स्कंद में नहीं जाना चाहिए। तो यहाँ वैष्णवों के संघ में और अपने प्रमाणिक आचार्य परंपरा के अनुगत होकर हम 9 स्कंद तक श्रवण किए और अब 10वें स्कंद में प्रवेश किए। और 10वें स्कंद के भी 11 श्लोक का यहाँ पर सत्र हो चुका है, आज 13वां श्लोक है। तो वैसे 10वें स्कंद में यह व्याख्या करने की हमारी कोई योग्यता नहीं है, हमारे से भी कई वरिष्ठ और हमारे गुरुजन तक की योग्यता रखने वाले भक्त यहाँ पर उपस्थित हैं, लेकिन फिर भी प्रयास करते हैं कृष्णा का संतुष्टि के लिए कि जितना हो सके हमें कृष्णा का कथा का रसास्वादन करना चाहिए। ये प्रभुपाद महाराज की कृपा है या हमारा जो ये वैष्णव गौड़ीय परंपरा है जिसमें नित्यानंद प्रभु जैसे अवतार, जो सब अवतार शिरोमणि हैं, उन्होंने अपनी लीलाओं में भी यह दर्शाया योग्यता अयोग्यता का ध्यान न रखते हुए सबको कृष्ण प्रेम प्राप्त करने का अधिकार दिया है। तो हम भी उसी परंपरा में हैं, तो उनकी ही कृपा और विशेषकर प्रभुपाद जी की कृपा से हम जैसे अयोग्य व्यक्ति भी इस पर बोलने के लिए हिम्मत करते हैं। वैसे भगवान की कृपा के सिवा यह कोई संभव नहीं है, तो उनके ही कृपा की याचना करके हम यहाँ पर आइए इस 10वें स्कंद के 12वें और 13वें श्लोक पर पाठ करते हैं। 13वां श्लोक लिखा गया है, 12वें में तात्पर्य नहीं है। आइए पहले श्लोक में आए हुए शब्दों को उच्चारण करते हैं। ना एषा अति दुस्वहा क्षुता माम त्यक्त उदम अपि बाध्यते पिबन्तम् त्वत्मुख अम्बोज अच्युत हरि कथा अमृतम्। नेशाति दुस्वहा शुन्माम् नेशाति दुस्वहा शुन्माम् त्यक्तोदमपि बाध्यते पिबन्तं त्वन्मुखाम्बोज अच्युतम् हरिकथामृतम्। नेशाति दुस्वहा शुन्माम् त्यक्तोदमपि बाध्यते पिबन्तं त्वन्मुखा अम्बोज अच्युतं हरिकथामृतम्। च्युतं हरिकथामृतम् नेशा अति दुस्सहा शुन्माम् त्यक्तोदमपि बाध्यते पिबन्तं त्वान्मुखाम्बोज च्युतं हरिकरामृतम् नेशाति दुस्सहा शुन्माम् त्यक्तोदमपि बाध्यते पिबन्तं त्वन्मुखाम्बोज च्युतं हरिकथामृतम् बाध्यते तं तव मुखाम्बोज माताजी नेशादि दुसह शुन्मा त्यक्तोदमपि बाध्यते पिबन्तं त्वन्मुखाम्बोज च्युतं हरिकथामृतम् नेशामति दुसह शुन्मा नहीं अति दुस्सह सहने में अत्यंत कठिन श्रुता भूख माम मुझको त्यक्त उदम जल ग्रहण करना छोड़ देने के बाद अपि भी बाध्यते बाधा नहीं डालता है पिबन्तम् पीते रहने पर त्वत् मुख अम्बोज आपके मुख कमल से च्युतम् निकला हुआ हरि कथा अमृतम् कृष्ण कथा का अमृत इस श्लोक का अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज के द्वारा। जय श्रील प्रभुपाद महाराज की। मृत्यु द्वार पर होते हुए अपने व्रत के कारण मैंने जल ग्रहण करना छोड़ दिया है, फिर भी आपके कमल मुख से निकलते हुए कृष्ण कथा रूपी अमृत का पान करने से मेरी असह्य भूख तथा प्यास मुझे किसी तरह भी बाधा नहीं पहुंचा रही है। तात्पर्य, 7 दिनों के भीतर मरने की तैयारी करने के उद्देश्य से महर्षि ने भोजन तथा जल ग्रहण करना छोड़ दिया था। मनुष्य होने के नाते उनको भूख तथा प्यास लगनी स्वाभाविक थी, इसलिए सुखदेव गोस्वामी कृष्ण कथा बंद करना चाह रहे थे। उन्होंने कहा, मेरे उपवास से उत्पन्न भूख तथा प्यास मुझे नहीं सताती। एक बार मैं अत्यंत प्यासा था, जो जल पीने के लिए शमिक मुनि के आश्रम में गया था, किंतु मुनि ने मुझे जल नहीं दिया, अतएव मैंने उस मुनि के कंधे पर एक मृत श्रीप लपेट दिया, जिसके फल स्वरूप ब्राह्मण के बालक ने मुझे शाप दे डाला। किंतु अब मैं स्वस्थ हूं, मैं भूख तथा प्यास से तनिक भी विचलित नहीं हूं। इससे सूचित होता है कि यद्यपि भौतिक स्तर पर भूख तथा प्यास बाधक बनती है, किंतु आध्यात्मिक स्तर पर थकान जैसी कोई वस्तु नहीं होती। सारा संसार आध्यात्मिक प्यास के कारण कष्ट उठा रहा है। हर जीव ब्रह्म या आध्यात्मिक आत्मा है, और उसे अपनी भूख प्यास बुझाने के लिए आध्यात्मिक भोजन की आवश्यकता पड़ती है, किंतु दुर्भाग्य ही कहेंगे कि संसार कृष्ण कथा अमृत के से सर्वथा अनभिज्ञ है। इसलिए कृष्ण भावना अमृत आंदोलन दार्शनिकों, धर्मविदों तथा सामान्य लोगों के लिए वरदान तुल्य साबित हो रहा है। कृष्ण तथा कृष्ण कथा में निश्चित रूप से विशेष आकर्षण है, इसलिए पर ब्रह्म कृष्ण अर्थात सर्वाधिक आकर्षक कहलाते हैं। अमृत शब्द चंद्रमा का भी घोतक है, और अंबुज का अर्थ है कमल। सुहावनी चांदनी तथा कमल की सुहावनी सुगंध मिलकर सुखदेव गोस्वामी के मुख से कृष्ण कथा सुनने के आनंद प्रदान कर रही थी। कहा भी गया है, मति न कृष्णो परतः स्वतो वा मिथो अभिपद्येत गृहवृतानाम अदांत गोभी वर्षिता तमाइत्रम पुनः पुनः चर्वित चर्वणानाम। भौतिकवादी जीवन के प्रति अत्यंत आसक्ति व्यक्ति अपनी अनियंत्रित इंद्रियों के कारण नारकीय स्थिति की ओर बढ़ते जाते हैं, और एक बार चबाए हुए को पुनः पुनः चबाते रहते हैं। उनमें न तो किसी के उपदेश से, न अपने आप, न ही इन दोनों के द्वारा कृष्ण के प्रति रुचि जागृत होती है। संप्रति सारा मानव समाज चर्वित चर्वणम करने में लगा हुआ है, पुनः पुनः है चर्वित चर्वणानाम। लोग एक शरीर से जन्म लेकर मरने और पुनः दूसरा शरीर धारण कर फिर मृत्यु भोगने के लिए तैयार रहते हैं। इस जन्म मृत्यु के चक्कर को रोकने के लिए कृष्ण कथा अथवा कृष्ण भावना अमृत नितांत आवश्यक है, किंतु जब तक सुखदेव गोस्वामी जैसे स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से कृष्ण कथा नहीं सुनी जाती, तब तक सारी भौतिक थकान को दूर करने वाली कृष्ण कथा के अमृत का न तो आनंद लिया जा सकता है, न ही आध्यात्मिक अस्तित्व आनंदमय जीवन भोगा जा सकता है। जब हम कृष्ण भावना अमृत आंदोलन के बारे में सोचते हैं, तो हम देखते हैं कि जिन्होंने कृष्ण कथा रूपी अमृत का आस्वादन कर लिया है, वे सारे ही भौतिक इच्छाओं का परित्याग कर देते हैं, किंतु जो कृष्ण या कृष्ण कथा को नहीं समझते, वे कृष्ण भावना भावित जीवन को मस्तिष्क मस्तिष्क की धुलाई या मन नियंत्रण मानते हैं। एक ओर जहां भक्तगण आध्यात्मिक आनंद का अनुभव करते हैं, वहीं अभक्तों को यह देखकर हैरानी होती है कि भक्तों ने भौतिक लालसाओं का परित्याग कर दिया है। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोऽमिष्टम् स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपपदामय्यं ददाति सौपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलम् श्रीगुरुणा वैष्णवाञ्च श्रीरूपं सहग्रजातं सहगणरघुनाथं वितं तं सजीवं साधवेतं सावधूतं परिजनसहितं चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखामुकुन्दाञ्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोऽस्तु ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। आराध्य भगवान् व्रजेश तनयस्तधाम वृंदावनम रम्य काचिदा उपासना व्रजवधूवर्गेयु कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणामलं प्रेमापुमर्थो महान् श्रीचैतन्य महाप्रभु मत इदं तत्रादरो न परा। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर हम महाराज दीक्षित की उत्कंठा को देख रहे हैं कि कृष्ण कथा के प्रति उनकी कितनी लालसा है। दशम स्कंद के प्रारंभ में ही महाराज दीक्षित ने यह जिज्ञासा किया था कि हे मुनिश्रेष्ठ मुनिशतम हे मुनिश्रेष्ठ आपने यदुवंश सूर्यवंश और चंद्रवंश के वंश विस्तारों का वर्णन किया है। मुनिशतम करके उनको बुलाया। मुनिशतम मुनि वो होते हैं जो उत्कृष्ट विषय का आध्यात्मिक विषय के बारे में मनन करते हैं उनको मुनि कहा जाता है। लेकिन जो सत सत का अर्थ जो कृष्ण है जो उनके ही विषय में चिंतन करते हैं तो वो मुनि सत्तम। भागवतम में इस प्रकार के शब्द आए हैं, जैसे कहीं कहीं नारद जी कहते हैं महामुनि, उपासितम महामुनि या मुनि सतम। मुनि वो है जो मनन करते हैं, आध्यात्मिक चिंतन करते हैं, और महामुनि वो है जो कृष्ण के विषय में चर्चा करते हैं या कृष्ण के विषय में चिंतन करते हैं, वे महामुनि हैं। या मुनि का अर्थ होता है जो मौन हो जाते हैं, मौन होकर चिंतन करते हैं, लेकिन महामुनि वो हैं जो कृष्ण कथा या कृष्ण कीर्तन के सिवा कुछ नहीं बोलते, दूसरे विषयों में मौन रहते हैं, और इस विषय में महामुनि और मुनि सतम। तो हे मुनि श्रेष्ठ, आपने यदुकुल और सूर्यकुल और चंद्रवंश के विषय में विस्तार से मुझे बताया। राज्यम सो वंशया नाम चरितम परम अद्भुतम, ये दोनों वंश का जो चरित्र है बड़ा अद्भुत है। चरितम परम अद्भुत, अद्भुत नहीं परम अद्भुत है। इस वंश के बारे में हमने नवे स्कंद में सुना, परम अद्भुत चरित्र है इस वंश में आए हुए वंशजों का, आश्चर्य में डाल देता है, ऐसा ऐसा इनका वंश चरित्र है। जैसे हमने कई कई वंशों का वर्णन सुना, तो उसमें वर्णन किया गया कि जैसे महाराज सगर, सगर की सौतेली माताओं ने उनकी माँ को जहर दे दिया था, तो जहर के कारण बालक गर्भ में मर जाना चाहिए, लेकिन वे मरे नहीं, और जब जन्म लिया तो जहर के साथ जन्म लिया, हथेली में जहर लेकर जन्म, इनका नाम सगर पड़ा। ऐसे इनके आगे चलकर एक वंश का वर्णन आता है मंदाता। मंदाता जो थे, उनके पिता ने यज्ञ में पूजित जल को पी लिया, तो वे स्वयं गर्भवती बन गई। मंदाता अपनी माँ से जन्म नहीं लिए, पिता से जन्म लिए, और उनसे मंदाता का जन्म हुआ पिता से। अद्भुत बात है, ऐसे कई अद्भुत चरित्र हैं इनके वंश में। लेकिन परम अद्भुतम, परम अद्भुत बात है, परम अद्भुत बात यह है नवे स्कंद का जो सार है, कि ये जो सूर्यवंश और चंद्रवंश में जो राजा हुए, ये वास्तव में पूरे पृथ्वी के थे, और इनके पास धन पद प्रतिष्ठा और भोगों का सहज इनके पास ये सब प्राप्त था। जिस धन के लिए, जिस पद के लिए, जिस भोगों के लिए संसार में बड़े बड़े युद्ध होते हैं, बहुत झगड़े हो जाते हैं, भाई भाई को मार डालते हैं, वो धन और वो भोग उनके पास सहज प्राप्त था। लेकिन वे इस भोग में रहते रहते शने शने समय आते इन पद, पूरे संसार के राज सिंहासन और अनेक पत्नियां, संसार के भोग उनको इस तरह त्याग दिया जैसे कोई तृण को त्याग देता है, और इस सबको त्याग कर वे जंगल में चले गए कृष्ण प्राप्ति, भगवत प्राप्ति हेतु। ये परम अद्भुत बात है, संसार के भोगों को प्राप्त होते हुए भी और उसमें रहते हुए भी उन्होंने एक झटके से, कई राजा ऐसे हुए जिन्होंने तृणगत सिंहासन को त्याग कर चले, बड़े बड़े राजा जंगल में चले गए। हम लोग तो देखते हैं कि कभी कभी हम वृंदावन जाते हैं और उसमें बहुत धनी व्यक्ति साथ में होते हैं, तो कहते हैं ऐसे रूम मिलेगा, सेपरेट रूम मिलेगा, और वहां भी जाते हैं तो कपड़े लॉन्ड्री में देते हैं, प्रेस है। अगर ज्यादा धन है तो हमारा वहां भी वो बर्ताव रहता है। लेकिन ये राजा गए तो कहीं उल्लेख नहीं है कि घर से कोई सूटकेस लेकर गए या एक से दूसरा ड्रेस भी लेकर गए या कोई एक आध नौकर साथ में लेकर, कुछ नहीं, बिल्कुल तृणवत त्याग कर चले गए। तो नवे स्कंद में जो इन दोनों कुल का जो वर्णन हुआ है, ये दसम स्कंद में प्रवेश के पहले का शिक्षा है कि संसार के जो भोग हैं वास्तव में वो अनित्य और नश्वर हैं, उससे व्यक्ति संतुष्ट नहीं हो सकता। अगर संतुष्ट मिलती तो ये राजा इसको त्याग कर क्यों चले गए। तो संसार के भोगों की अनित्यता, नश्वरता, और कृष्ण भक्ति की आवश्यकता, कृष्ण भक्ति ही परम संतुष्ट प्रदान कर सकती है, यही जीव का परम लक्ष्य होना चाहिए। इस प्रकार का इन दोनों वंशों से शिक्षा मिलता है। तो दशम स्कंद के प्रवेश करने के पूर्व नवम स्कंद जैसे द्वार जैसा है, तो ये शिक्षा मिलती है कि संसार के भोग हमको संतुष्ट नहीं कर सकते, इसलिए कृष्ण प्रेम की ओर आगे बढ़ना, अग्रसर होना चाहिए। तो ये इन कुल में आए हुए राजाओं का जो चरित्र है परम अद्भुत, परम अद्भुत है, बहुत दिव्य है। और उसमें भी कि कहते हैं कि भगवान जो कृष्ण है, ये यदु यदु च धर्मशील नित्रम, यदु कुल में जो धर्मशील थे, धर्मशील कुल है यदु, विशेषकर महाराज यदु का जिक्र करते हैं। यदु महाराज के विषय में ऐसे देखा जाए तो जब यदु महाराज से ययाति ने अपनी जरा का ट्रांसफर करने के लिए कहा बुढ़ापे को, तो यदु महाराज ने मना कर दिया। तो एक तरफ से अपने वृद्ध पिता के आदेश का उल्लंघन उन्होंने किया था, लेकिन फिर भी यहां पर महाराज जी उनको धर्म शिष्य कहते हैं। भगवान ने कहा है कि अगर मेरे लिए, मेरे लक्ष्य, मेरे को लक्ष्य मानकर अगर कोई पाप भी करता है तो वो धर्म है, और मुझसे वंचित रहकर, मुझसे दूर रहकर अगर कोई धर्म का भी पालन करता है तो वो कोई धर्म धर्म नहीं। तो यदु महाराज ने जो मना किया था, तो उनका भाव था यदु महाराज का कि जीवन का उद्देश्य है भगवत सेवा, भगवान की सेवा करना। तो शरीर अगर स्वस्थ रहता है, शरीर में जुवानी है, तब हम भगवान की सेवा ठीक ठीक कर सकते हैं। अब ये बुढ़ापा का शरीर में ले लूंगा तो भगवत सेवा, कृष्ण सेवा कैसे कर पाऊंगा, इस उद्देश्य से उन्होंने मना कर दिया। तो यदु महाराज का जी, यदु धर्मशील वे धार्मिक और सभी सद्गुणों से संपन्न व्यक्ति थे यदु महाराज, उनके कुल में भगवान ने जन्म लिया। प्रभुपाद महाराज विशेषकर इसका उल्लेख करते हुए कृष्ण बुक में लिखते हैं कि जैसे दिशाएं 10 दिशाएं हैं, लेकिन सूर्य एक विशेष दिशा में उदित होता है, पूर्व दिशा में, वैसे ही अनेक कुल हैं, लेकिन प्राय भगवान जब अवतरित होते हैं तो ये दो कुलों में अवतरित होते हैं, चंद्रवंश में, चंद्रकुल में, या सोमकुल में, विशेषकर भगवान का अवतार इस कुल में होता है। ये भगवान की चॉइस है, भगवान की चॉइस, भगवान चुनते हैं कुल को, वे इसके लिए स्वतंत्र हैं। सम भवामी आत्म माया, मैं मेरी इच्छा से, जीव का जो जन्म होता है तो वो जीव की इच्छा से नहीं होता, उसके कर्म फल के अनुसार, उसको कोई कुल चॉइस करने की स्वतंत्रता नहीं है। अगर स्वतंत्रता होती तो सभी का इच्छा है टाटा बिल्ला के गर्भ में, लेकिन हमने सुना कि टाटा को कोई लड़का ही नहीं हुआ, उसको गोद लेना पड़ा, कितने लोगों का इच्छा होगा टाटा के गर्दन, लेकिन जीव इसके लिए स्वतंत्र नहीं है। इसलिए भगवान के जन्म को और कर्म को जीव से पृथक मानना चाहिए। वो कुछ लोग हमने देखा, ऐसे ऐसे धर्मवादी लोग हैं जिनका नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन भगवान को खींचकर मनुष्य के लेवल में लाकर फिर बात करते हैं, कृष्ण ने ऐसा क्यों किया, कृष्ण ये तो धर्म के विरुद्ध है, ऐसा करना चाहिए, ऐसा आक्षेप करते हैं, कृष्ण को पाप लगा। अरे वाह, पाप आदमी को होता है, भगवान को भी पाप लगता है क्या? लेकिन वो भगवान को भी खींचकर अपनी लाइन में बिठाते हैं और फिर बात करते हैं, तो कैसे समझ सकते हो आप भगवान को? या इस जगत में भी अगर कोई श्रेष्ठ अधिकारी है और साधारण व्यक्ति है तो उसमें भी तुलना नहीं हो सकती। उसमें भी व्यक्ति अगर खींचकर उसको अपने, जैसे आप ट्रेन में यात्रा करते हैं, तो यात्रा करते हैं तो टीसी आता है, आपसे पूछता है टिकट लाओ, तो आप नहीं कह सकते कि टीसी आप भी टिकट लाओ। एक साधारण स्तर पर भी अधिकारी व्यक्ति को खींचकर आप अपने लाइन में नहीं बिठा सकते, आप हमसे पूछते पहले आपका टिकट है क्या, नहीं पूछ सकते, वो बिना टिकट अंदर प्रवेश कर सकता है। तो एक साधारण स्तर, भौतिक स्तर पर भी ये देखा जाता है, तो भगवान को भी खींचकर मनुष्य स्तर पर लाना और फिर मनुष्य स्तर पर देखकर उनकी लीलाओं की तुलना करना किसी की चाहिए तो तुम्हों का काम है। तो इस प्रकार भगवान अपना चॉइस करते हैं। प्रभुपाद लिखते हैं कि वो यदुकुल का भगवान चॉइस किए थे और इसका कारण भगवान ने दे, इसका कारण भगवान ने जन्म के समय दिया। माता देवहूति और भगवान वसुदेव को बताया था कि मैं आपके कुल में क्यों जन्म लिया। भगवान भी आश्चर्यचकित थे जब बता रहे हैं तो बता रहे वर्वा अग्रे, मैंने आपके जब आप प्रश्नी और सूचपा थे तो मैंने वर के लिए आग्रह किया था कि वर मांगो। हाँ अप वर्गो अपि न, आपने मुक्ति तक को ना मांगा, अप वर्ग को भगवत धाम को या मुक्ति को, अप वर्गो अपि न, मैं मुक्ति दाता हूं, मुक्ति प्रदान करने वाला था, मैंने आपसे वर का आग्रह किया। जो मुमुक्षु होते हैं, तपस्या करते हैं, साधन में लगते हैं, तो उनका लक्ष्य होता है मुक्ति, मुक्ति प्राप्त करें, भगवत धाम प्राप्त करें, और मैं मुक्ति देने वाला आपके समक्ष प्रकट हुआ था, मैंने आग्रह भी किया कि वर मांगो, वर व आग्रह मैंने आग्रह किया, लेकिन अपवर्गो अपि न, आपने अपवर्ग तक को नहीं मान नहीं मांगा है। मोहितो देव माया, आप मेरी योग माया से मोहित थे, मेरे प्रेम में इतने वात्सल्य भाव में इतने डूबे हुए थे कि आपने मुक्ति को भी तुच्छ कर दिया। तो भगवान ऐसे अपने प्रेमी भक्तों के कुल में जन्म लेते हैं। भगवान से इतना प्रेम था कि मुक्ति तक को तुच्छ माना उन्होंने, मुक्ति का भी आग्रह नहीं किया। आप जैसा पुत्र, बस आप हमारे पुत्र बने, हम आपका लालन पालन करें, ये वात्सल्य प्रेम था। तो यदुकुल में भगवान ने जन्म लिया, आपने वो अपने अंशों के साथ में अवतरित हुए, 17 अंशे बलराम जी के साथ अवतरित हुए। उनकी कथाओं को अब मैं विस्तार से सुनना चाहता हूँ हैं, और उस कथा को सुनने के लिए जो इनकी लालसा है वो कहते हैं निवृत्त तृषे रूप गीय माना। उनकी जो कथाएं हैं वे जो संसार की वासनाओं से निवृत्त हैं ऐसे लोगों द्वारा और जो परंपरा में आए हुए भक्त हैं उनके द्वारा उनकी कथाएं गाई जाती। निवृत्त तृषे रूप गीय माना भव औषधि छोत्र मनो विरामान। उनकी कथा जो है वो कृष्ण कथा है, ये माया से मुक्ति के लिए मुख्य औषधि है। भव रोग से निवृत्त निवारण, भव रोग के निवारण के लिए या जीव के माया से मुक्त होने के लिए उपयुक्त औषधि मात्र भगवत कृष्ण कथा है। भव औषधि उत्तरमन भव औषधि है। जब वेदव्यास महाराज ने सभी शास्त्रों का वेदों की व्यवस्था कर दी, 17 पुराण लिख दिए, महाभारत भी लिख दिया, उसके बाद भी संतुष्ट नहीं थे और उनका नारद जी से संवाद हुआ और नारद जी के जाने के पश्चात उन्होंने इसका मनन करना प्रारंभ किया। तो उन्होंने ध्यान किया तो ध्यान में देखा कि जीव माया के अधीन है और माया कृष्ण के अधीन है। तो जब तक कृष्ण के प्रति जीव का आकर्षण नहीं होता है, प्रेम अनुराग नहीं होता है, तब तक वो माया से छूट नहीं सकता या माया छोड़ नहीं सकता। गीता में भी भगवान देहि हर्षि गुणमयी मम माया दुरत्यया, बहुत कठोर है इसको त्याग करना। लेकिन माम एव, एव शब्द लगाकर कृष्ण ने वहां रिजवर कर दिया कि जो माम एव मेरे, माम एव प्रपदंते, मेरी शरण में प्रकृष्ट रूपे जो मेरी शरण में आ जाएगा माया, वो माया से तर सकता है। तो भव औषधि, भव औषधि है, भव बंधन की औषधि है माया से मुक्त। और भव का अर्थ होता है जन्म मृत्यु का चक्कर। कृष्ण की कथा जो है वही भव औषधि का उपाय है। लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं कि भव औषधि का उपाय है कृष्ण के प्रति अनुराग जब जीव का हो जाता है तो वो माया से मुक्त हो जाता है। लेकिन इसके लिए एक योग्यता बताई गई निवृत्त तर्षे। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि आज भी भारत में भागवत था सुनने का इतना ही लोगों के पास, लोग सुनने का रुचि रखते हैं। देखा जाता है कि लाखों लाखों लोग सुनते हैं और लाखों लाखों लोग वक्ता है, लेकिन स्थिति इतना बिगड़ चुका है कि ऐसे ऐसे वक्ता हैं जो न प्रमाणिक परंपरा में हैं और न ही भौतिक विषयों से निवृत्त है। इसलिए ऐसी वक्ताओं से कथा सुनने के कारण उनका कृष्ण के प्रति कोई अनुराग उत्पन्न नहीं होता है। और तब लोग कहते हैं कितना कथा होता, कितना ये धर्म का बहुत प्रचार चल रहा है, प्रचार चल रहा है, लेकिन हम देखते हैं कि उसके सामने इतना ही कलयुग का बंधन भी इतना ही कड़ा, माया का बंधन भी इतना कड़ा ही दिख रहा है, कोई ढीला पड़ता दिखता नहीं। ये तो जो प्रभुपाद जी के सानिध्य में या गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में कुछ भक्त हैं उनको देखा जाता है कि वे निवृत्त हैं, देखा जाता है। और इनको देखकर दूसरे लोग आश्चर्यचकित, ठीक है धर्म का पालन करना चाहिए, लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं, जब देखो दौड़कर मंदिर, जब देखो उधर, जब देखो उधर, क्या कुछ समाज का नहीं पढ़ा है, कुछ धंधे में ध्यान नहीं देते हैं, वो नहीं करते हैं, ऐसा आक्षेप करते हैं। कई कई भक्तों के पार्टनर भक्त नहीं है तो वे लोग आक्षेप करते हैं, पागल आदमी क्या ऐसा, तो फिर क्यों है। हमको एक हमारे अपने लाइफ मेंबर भी हैं जैन की भाई, बहुत भक्त जानते होंगे, तो बोलते हैं तो फिर आप ऐसा चाहते हैं संडे को भी चलने, तो फिर ब्रह्मचारी रहना था, क्यों शादी किया, ऐसा ऐसा भाग कर जाते हैं। प्रभुपाद जी ने इस श्लोक के तात्पर्य में ये लिखा कि लोग हैरान हो जाते हैं। तो ये प्रमाणिक परंपरा में आने के कारण वैराग्य उत्पन्न है। भगवान कपिल देव चौथे स्कंद में माता देवहूति से बताते हैं कि जब तक हमारा कर्म हमको धर्म तक नहीं ले जाता और हमारा धर्म हमको वैराग्य तक नहीं ले जाता और हमारा वैराग्य कृष्ण सेवा तक नहीं ले जाता तो ये सब व्यर्थ है, कोई काम का नहीं। भले लोग कहते हैं हम धर्म का पालन कर रहे हैं, धर्म का पालन कर रहे हैं, ये सब बेकार है, वैराग्य भी बेकार है। निवृत्त तरह का भले संसारिक विषयों से कुछ लोग हैं निवृत्त, लेकिन कृष्ण के प्रति अनुराग नहीं है तो वो भी निवृत्त तरह नहीं है। ऐसा व्यक्ति कई देखे जाते हैं, वैरागी हैं, संसार से वैराग्य ले लिया है, कर्म नहीं है संसार और है, लेकिन कृष्ण के प्रति अगर उनका अनुराग नहीं है तो ऐसे लोगों से सुनने से कोई फायदा नहीं। निवृत्त तरह का अर्थ संसार के विषयों से मुक्ति ही नहीं, संसार के विषयों से वैराग्य लेकिन साथ साथ में कृष्ण के चरण कमल के प्रति अनुराग, यह है निवृत्त तरह। तो ऐसे वक्ताओं के द्वारा जब सुना जाता है तब इसका प्रभाव होता है, तब भव औषधि श्रोत्र मनोवीर, वो मन को आनंद प्रदान करता है और भव रोग से जन्म मृत्यु के चक्कर से पार करने का ये उपयुक्त औषधि है। मैत्रेय मुनि ने भी इसको बहुत सुंदर बताया, जब विदुर जी ने भगवान कृष्ण के अवतार के विषय में प्रश्न किया था तो उसका उत्तर देते हुए मैत्रेय मुनि बहुत सुंदर कृष्ण कथा का महत्व बताते हैं। साधु वीरम त्वया पृष्टम अवतार कथाम हरे, साधु वीरम, विदुर जी से कहते साधु, हे साधु वीर, वीर कहते हैं, बहुत सुंदर शब्द वीर है। वास्तव में भक्ति करना, कृष्ण कथा में इतना अनुराग रखना, ये वीरों का काम है, कायरों का काम नहीं। हमारे राजस्थान की भक्त शिरोमणि मीराबाई एक भजन में गाती है, भक्ति खोड़ा ने वाली धार, खोड़ा कहते हैं तलवार, तलवार के ऊपर चलने जैसा भक्ति है। तो तलवार के ऊपर तो वीरों के सिवा कौन चल सकता है, वीर बहुत इस संसार में वीर होता है जो बड़े बड़े देशों को लोगों को जीत लेता है, लेकिन वो भी जब देशों को जीतने के बाद राजमहल में प्रवेश करता है तो मुकुट उतार के रानी के चरणों में धर देता है, नहीं 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 तुम शंका मत करो। तो इस प्रकार भले देश जीत ले, वास्तव में वो वीर नहीं, वीर तो वो है जो माया के साथ युद्ध करके माया को प्राप्त कर दे। तो इसको कहते हैं यत प्रशस्ति मृत्यु नाम मृत्यु विना